சிவகிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சசானூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். வந்தே முகுந்தமரவிந்ததலாயதாக்ஷம் குந்தேந்துசங்கதசனம் சிசுகோபவேசம் இந்திராதிதேவகணவந்திதபாதபீஷம் விருந்தாவனாலயமகம் வசுதேவசூனம். தமாம் தோஷோ சே பச்கர் தமாம் அவகுணோ கோ ஹட்டாகர் சத்குண சம்பன்ன ஹோனே ஔர் பகவான் கே தெய்வீ குணோ கோ அப்னாகர் பகவான் கோ பிராப்த கர்னே கா ஏக் சாதன் ஹை. சாதன் பஹுத் சே ஹை, உன்மே ஏக் யே ஹை கி நிரந்தர் சத்குணோ கா சிந்தன் கர்னா. மனே தோ பிரகார் சே மனுஷ்ய அப்னே அவகுணோ கோ தூர் கர் சக்தா ஹை. ஏக் தோ அவகுணோ சே லட்தே ரஹ்னா, ஔர் ஏக் சத்குணோ கோ புஷ்ட கர்னா. இன்மே மனோவைஜானிக் தரீகா யே ஹை கி சத்குணோ கா நிரந்தர் சிந்தன் கரே அப்னே பி தூஸரோ கே பி. இஸ்மே பஹுத் சே ஔர் லாப் ஹை. கர் மே பாயி பாயி மே ஜகடா, பத்தி பத்னி மே ஜகடா ஹோ, ரிஷ்தேதாரோ மே ஜகடா ஹோ, படோசியோ மே ஜகடா ஹோ, தோ க்யா கரே. பஹுத் சம்ஜ்னே கி ஔர் யாத் ரக்னே கி பாத் மே கஹ் ரஹா ஹூன். உன்கே அவகுணோ கோ தோஷோ கோ பதா பதா கர் சித்த மே துக்கி ஹோதா ரஹே ஔர் உன்கி ஆலோசனா கர்த்தா ரஹே யே தீக், யா உன்கே சத்குணோ கோ தேக் தேக் கர் உன்கோ புஷ்ட கர்த்தா ரஹே யே தீக். கிஸீ கே பீ தோஷோ கோ தேக் கர் ஔர் தோஷோ கோ பதா கர் இஸ்ஸே ஆப் தோஷ முக்த நீ கர் சக்தே. வோ சுட் ஜாயேகா, வோ ஆப்கோ அப்னா சத்ரு மானேகா. ஔர் யதி ஆப்னே உஸ்கே குணோ கி தாரீஃப் கி, யதி ஆப்னே ஜூட் மூட் நஹி, குஷாமத் கே லியே நஹி, கிஸீ புரி நியத் சே நஹி, சச்முச் உஸ்மே ஜோ கோய் குண தீக்ஹே உன் குணோ கோ ஆப் கிரஹண கரேங்கே, உன்கி தாரீஃப் கரேங்கே, தோ உஸ்கே மன மே ஆப்கே பிரதி சத்பாவ் உத்பன்ன ஹோகா. ஔர் கேவல் உஸீ கே நஹி, யே அப்னே லியே பீ யே ஆவஷ்யக் பாத் ஹை. நிரந்தர் அப்னே கோ தீனஹீன் சாதனஹீன் அகர்மண்ய மான்தா ரஹேகா, தோ நிராஷா உத்பன்ன ஹோகி. மானே பகவான் கே பல பர், பர் அப்னே கோ வோ மானே கி மே சப் குச் கர் சக்தா ஹூன். சத்குணக் ஜோ அப்னே அந்தர் தீக் ஹை உன்கி புஷ்டி கரே, தூசரோ மே சத்குணோ கோ தேக் தேக் கர் உன்கோ அப்னாவே. அபி மே நீச்சே பேடா தா தேக் ரஹா தா, தோ உஸ்மே படி சுந்தர் கவிதா அங்கிரேஜி கி தீ, மேரே ஹாத் மே தி மே லே ஆயா, வோ முஜே யாத் ஆ கயி. படி சுந்தர் சீஜ் ஹை. கேதே ஹை காட் இஸ் மை ஹெல்ப் இன் எவ்ரி நீட், God is my help in every need, God does my every hunger feed, God walks beside me, guides my way through every moment of day, I now am wise, I now am true, patient, kind and loving too. All things I am, can do and be, through sense the truth that is in me. God is my health, I can't be sick. God is my strength, unfailing grip. God is my all, I know no fear, since God and love and truth are here. इतना सुंदर भाव ये भगवान के साथ जोड़कर अपने को सद्गुणों का स्मरण करना वो बड़े ही विश्वास के वाक्य हैं। कहते हैं ईश्वर प्रत्येक आवश्यकता में मेरे सहायक है। विश्वास ईश्वर मेरी प्रत्येक भूख के भोजन है। ईश्वर निरंतर मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। सब समय सर्वदा प्रत्येक क्षण मैं जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं सर्वे हूँ और मैं प्रेमी हूँ। सब चीजें मैं कर सकता हूँ और सब चीजें मैं बन सकता हूँ महात्माओं के द्वारा। ये सत्य मेरे अंदर वर्तमान है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। ईश्वर मेरी शक्ति है, अव्यर्थ और त्वरित। ईश्वर मेरा सर्वस्व है, इसलिए मैं भय तो नहीं जानता। ईश्वर प्रेम और सत्य ये मेरे साथ। अपनी भावनाओं को आप निरंतर भावित करिए, अपने मन को इन भावनाओं में लगाइए, आप में शक्ति आवेगी, साहस आवेगा, प्रेम आवेगा, दया आवेगी, सहिष्णुता आवेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आवेगा। निरंतर सोचिए मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरा क्या होगा, मैं तो सर्वथा सर्वथा निराश हूँ, मेरे लिए कोई आशा की चीज नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैं बीमारियों से घिर गया, मेरा काम। ये सोचिए जो जो आपका मन ऐसा बनेगा, क्योंकि ये चीजें आप में आती चली जाएंगी। आप अगर शक्ति का स्मरण करते हैं शक्तिमान होंगे, आप अगर दुर्बलता का स्मरण करते हैं दुर्बल होंगे। ये मन का बड़ा असर होता है शरीर पर भला। वो फ्रांस में एक डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा करते हैं, मनोवैज्ञानिक। उनकी किताब है अंग्रेजी में, इसमें दृष्टांत आया, एक सच्ची घटना उन्होंने लिखी कि एक आदमी के घर में देखने गया रोगी को, कुछ था नहीं, खाली थोड़ा सा उसको बहन था। मैंने कहा तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे को रोगी नहीं है, मैं जाकर रिपोर्ट भेजता हूँ। तो मैं अपने दवाखाने में आकर और उसको एक रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके एक घंटे बाद उसका आदमी दौड़ता हुआ आया, जल्दी आप चलिए, उसका मरना सन्न है, उनका हृदय बैठ रहा है, उनको ऊपर के श्वास आ रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है बदन, बड़ी बुरी हालत। डॉक्टर लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जा करके देखा तो सचमुच हृदय बैठ रहा, सचमुच शरीर में पसीना आ रहा, बदन ठंडा हो गया। बड़ी धीमी आवाज से उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ से रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और पढ़ते न मालूम मेरे क्या हो गया, ये दशा मेरी हो गई। तो कहा जरा वो रिपोर्ट देखू मैं। रिपोर्ट देख करके अब मैं समझ गया, रिपोर्ट की किसी दूसरे रोगी की जो भूषण के आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि अब आपके बच्चे में कोई आशा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, आप कुछ दिन वगैरह करना हो तो कर लीजिए। तो इस रिपोर्ट को पढ़ते ही इतना असर पड़ा शरीर पर, मन पर, कि शरीर अवसन्न हो गया, मरना आसन्न हो गया। तो डॉक्टर ने कहा मैं हमसे बड़ी भूल हो गई, ये रिपोर्ट आपके नहीं है, आपकी रिपोर्ट मैं अभी मंगवाता हूँ। आदमी भेजा, छपी रिपोर्ट उसकी थी, टाइप की हुई, वो आई, उसमें लिखा आपके कोई रोग नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके मन में कुछ कमजोरी है, आप पहाड़ पर हो आइए। जहां उसने इस रिपोर्ट को देखा, हृदय में बल आ गया, पसीना सूख गया, कांपना बंद हो गया, ताजगी आ गया। एक घटना सुनाऊं मैं आपको, सच्ची घटना है, सुनू ही मैंने देखी नहीं, पहले शायद सुनाई होगी। हिंदुओं का हमारे हिंदुओं के यहाँ ये जो रक्षा पूर्णिमा होती है, इस दिन वो दीवारों पर कुछ लिखते हैं और उनकी पूजा होती है, उनके भोग लगाया जाता है, मैंने उसको सून कहते हैं। तो एक घर में विदेश के यहाँ और घरवाली ने एक लेटे में वो गेरू भिगो कर रखी, लेटे में धर लिया उसको, सवेरे तक वो भीग जाएगी तो सवेरे उससे लिख लेंगे। लेटा रख दिया चार पाई के नीचे, और वो पुरुष जब बाहर से आए है उसके पिता पसे है, उन्होंने तो ये बात मालूम थी नहीं, तो प्रातः काल उठे, अंधेरा था, जल्दी उठते थे तो देखा लोटा मिल जाए, पानी भरा हुआ तो ले जा, जल ले जा। तो अंधेरा था तो पेड़ को देखा, लोटा पानी का भरा हुआ, उसे ले गए जंगल गए, हाथ धोया, इतने में कुछरा जीना हो गया, वो तमाम लाल पानी था, पानी पानी चारों ओर बिखर गया लाल, इतना खून निकला आज मैं कैसे जीऊंगा, ये मन में बात आ गई, इतना खून निकला शेरों खून होगा, वहीं वो मरना सन्न हो गए। गिर पड़े जब घर वालों को पता लगा कि बहुत देर से नहीं आए, तो घर वाले गए बेचारे खोजते खोजते, उठा के उसे सुलाए, अब उसको बोली आ रहे नहीं, शरीर कांप रहा उसका, हाथ में ठंडे हो गए, बड़ी मुश्किल घर लाए, खटिया पे सुलाया, बाबू जी को बुलाने आदमी भेजा, स्त्री ने कहा कि भाई पीछे वो भगवा लगेगी, तो भगवा लगने से पहले पहले लिख लेना चाहिए, तो ढूंढने लगी लोटा, लोटा था नहीं, किसने कहा कि मैं लोटे में रात को भिगो के रखी थी, मैं तुझे लोटा कहाँ चला गया, ये आज गई उस काम में, उसका कौन सा लोटा कहाँ रखा था, तो इसके नीचे रखा था मैंने, उसमें हिम्मत नहीं, उसमें हिम्मत रही, अरे तेरे खून नहीं था, तो मेरा बहन था, सुनना हो गया, अच्छा हो गया, बीमारी मिट गई। तो ये साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि हम जिस प्रकार की भावना करते हैं, निराशा की भावना करिए आप, आपके जीवन में निराशा आ जाएगी। आप अपने मन में ये भावना करिए कि भगवान की ताकत मेरे अंदर है, ये मैं कर रहा था उत्पत्ति निकलता यूनिटी, उसमें एक घटना लिखी, एक बीमार आदमी, उस बीमार आदमी ने बहुत इलाज किए, वो अच्छा नहीं होता था, उसके बड़ी तकलीफ रही, डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा होने की कोई आशा नहीं है, तो उसने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि हमारे शरीर के अवयवों में प्रत्येक अणु परमाणु जो है ये भगवान के द्वारा निर्मित है, शरीर का प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक परमाणु अणु ये सब भगवान ही है। उसके मन में आया कि भगवान तो मेरे होते हैं, मेरे रहते हैं। अगर शरीर के सारे परमाणु भगवान हैं तो मुझे रहते होना चाहिए, तो कहा मुझे नहीं हो सकता, विश्वास किया मन में। और वो एक घंटे में चल, उसने अपनी घटना लिखी है, यूनिटी नाम है जो पत्र निकलता कैलिफोर्निया से, उसमें घटना लिखी मैंने। तो अभी मेरे पास एक पत्र आया है, मैं वो दूंगा आपको जांच कराने के लिए। जोधपुर के पास एक ठिकाना है, उसमें ठाकुर साहब के भाई रहे थे नूतन सिंह उनका नाम, अभी हार घटना है। उनके पेट में 10 शेर की कोई गांठ, और 10 बन रहता था अच्छा है, तो जोधपुर अस्पताल में उनको लाए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाता, घर वाले ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अपना ऑपरेशन काम होगा नहीं, तो सवेरे ऑपरेशन होगा निश्चय हो गया। उनकी इच्छा था जी थी ऑपरेशन हो रहा हूं, उन्होंने रात को भगवान से प्रार्थना की क्या की वो जाना। प्रातः काल डॉक्टर ने आकर देखा कि पेट में गांठ नहीं, ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये मैं जो किसी सज्जन के पास भेजना चाहता हूँ जांच के लिए, कहा तो कितना सत्य है कि सत्य है तो कल्याण में छापना, नाम लिखा इसका नितिन सिंह। तो हम जिस प्रकार की श्रद्धा के साथ, जैसे विश्वास के साथ साथ हम जिन जिन भावों का अपने अंदर निरंतर चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। तो भगवान पर विश्वास करके निरंतर चिंतन कर, सद्गुणों का अपना कार्य ये सोचते हैं कि जो हमारे दुर्गुण हैं वो तो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे तत्काल, सद्गुण है भगवान की देन, तो भगवान ने हमने कृपा करके सत्य दिया है, ज्ञान दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, प्रेम दिया, इन सारे भावों का चिंतन करें निरंतर, तो अपने अंदर क्या होगा कि जो अवगुणों से लड़ने में जो ताकत खर्च होती है वो ताकत हमारी लग जाएगी सद्गुणों के पुष्ट होने, क्योंकि ताकत में मन की लगती है ना, ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो बुरे घराना अनिष्ट का चिंतन और उसके साथ लगाई, इसकी जगह अनिष्ट को नाश करने वाली ऐसी शक्ति ऐसी सेना अंदर पैदा करते हैं, ऐसा हम प्रकाश अंदर उत्पन्न कर दें जिससे वो अनिष्ट का अंधकार रहे ही नहीं, तो वो प्रकाश है भगवान के आश्रय पर सद्गुणों का सेवन, जिनका सद्गुणों की भावना कर, और इसी प्रकार से दूसरों में अगर प्रेम करना हो सद्गुणों को देखे, किसी की आलोचना न करे, किसी के दुर्गुणों की ओर न देखे। मैंने काल भी ये कहा था कि वो व्यावहारिक है और उस किताब में कुछ दोष भी है, कि किताब अंग्रेजी की है हाउ टू विन फ्रेंड्स कार्नेगी की लिखी हुई है अंग्रेजी में किताब है। मन अपने मित्रों पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये उस किताब का नाम है। सभी का एक ही है, अगर किसी को भी अपने वश में करना हो उसके सच्चे गुणों को देखो, उसके गुणों की तारीफ करो, उसके गुणों का आदर करो, उसके दोषों को मत देखो, दोषों को भूल जाओ, दोषों की आलोचना करना छोड़ दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा, उसका तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होगा। बल्कि यहां तक एक तरीका है, अगर किसी बैरी को मित्र बनाना हो, ये सब काम तो करना चाहे हो, पर वो रात को सवेरे रोज अपने मन से मित्रता के भावों को उसके पास भेजे, मन में मैत्री की भावना से प्रति पहले कल्पना करे और कल्पना करके उस मैत्री भावना को मनु के द्वारा समर्पण करे। मैत्री भावना उसके पास जा प्रकार की भावना करे। ये इस प्रकार का एक संबंध है संसार में सबका एक सा, कि वो हमारे मन की भावना उस पर जाकर प्रतिफलित होगी, उसके मन पर जाकर के वो अपना असर डालेगी, जो विरोधी भाव उसके मन में है उनको हटाएगी, मिटाएगी, संशोधन करेगी। इसलिए इस प्रकार का एक क्रम है ये किसी भी शत्रु को मित्र बनाने का, उसके प्रति मन में सद्भाव रखे, उसके प्रति क्रिया में सद्भाव रखे और अपनी सद्भावना अपने शुद्ध विचारों को उसके पास भेजता रहे और नियम करे कि रोज 2 मिनट 4 मिनट इस प्रकार की भावना हम भेजेंगे। इस भावना से क्या होगा, भावना वहां भेजते भेजते हमारा मन तो हो जाएगा सद्भाव में, उस पर पड़ेगा उसका असर और उसका मन पलटता रहेगा। जितनी शुद्ध भावना हमारी अधिक होगी उतना शीघ्र पलटेगा। ये आप करके देख लीजिए भले ये अनुभूत तथ्य है, तो इसी प्रकार से इस चीज को आप रखिए, आप रखिए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे रोग हो गया, मेरे रोग हो गया, रोग में उगल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा हुआ है तो बढ़ जाएगा। मैं स्वस्थ हूं, मेरे कोई बीमारी नहीं, तो बीमारी वहां रहने को स्थान ढूंढेगी, बस है ना, गॉड इज माई हेल्थ आई कांट बी सिक, कितनी बढ़िया बात है, ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, कितनी बढ़िया भावना है। इस भावना को बार 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 अपनाई, ईश्वर मेरा सुख है, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, ये भावना करिए आप, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, यो जीव से रखिए, क्या होगा, ये रिपीटेशन होगा जीव के द्वारा रखनी जो होगी इसको, इसका मन पर असर होगा और मन वैसा बन जाएगा, ये सुख दुख कोई बाघ नहीं आते हैं, ये बिल्कुल तथ्य की बात है। जिसके मन में दुख को स्थान नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता, चाहे अवस्था कोई भी रहे, बाहर की अवस्था जो है ये दुख ये मन पर तभी से डालती है कि जब मन उसे ग्रहण करता है, मन नहीं ग्रहण करता। वो प्रहलाद रघुत दत्तात्रेय जी की बात की थी, बोले महाराज आप मोटे कार्य करें और पड़े हैं आप रात, आपको कहां से इतना सुख मिलता है, बोले भैया हमको तो दुख मिलते ही नहीं, अवस्था व्यवस्था क्या है, कभी हम हाथी में बैठ जाते हैं और कभी कोई गड्ढे में बढ़ा देता है, कभी जमीन पर सोते हैं, कभी मखमली गड्ढे पर, कभी खाने को मिलता ही नहीं और कभी माल मिल जाता है, हमें परवाह है नहीं, दुख हमारे पास आता नहीं, नित्य सुखी कौन, नित्य सुखी कौन, जो अपने अंदर से दुख को हटा दे। दुख को हटाना क्या है, मैं दुखी हूं ये कल्पना कभी आने न दे, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, हर हालत में दुख बाहर घटना में नहीं है, मेरे एक बुआ है, मेरे बुआ है वो बड़ी उम्र की है, उसके पति को गुजरे बहुत वर्ष हो गए, उसके पैसे ठीक चल नहीं सकते, उसके पास पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, बुढ़िया है, मैं जब जब गया उसके पास, जब कभी वो कहती है कि भैया मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं, भगवान ने दुख पैदा किए ही नहीं, तो उससे पूरे दुख क्या होता है, धन पास नहीं दुख, साय नहीं दुख, पति नहीं दुख, पुत्र नहीं दुख, दुख अर्जा होता ये दुख का दुखों के ही तो नाम है हमारे यहाँ है? ये उसके पास कुछ नहीं है, पर वो क्या है कि सुख तो बाहर से वस्तु में आता नहीं, हमने दुख को मन से निकाल दिया, बहिष्कार कर लिया दुख का। हमारे अंदर भगवान, और भगवान में दुख आ नहीं सकता, ये तो सुख स्वरूप है, अतः हमारे पास दुख आ नहीं सकता। हम सुखी हम सुखी हम सुखी, वो सुखी नहीं आज संपत्ति वाले, वो सुखद है। वो जो विषयों के आधार पर सुखी मानते अपने को, वो सुखी नहीं। जो भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं, ये दुनिया सकता। अरे कोई मन में ये कर ले, सच्ची बात है कि भगवान का प्रेम मेरे अंदर, मैं प्रेमी, जगत मेरा कोई द्वेषी नहीं, कोई बैठ कोई बरी नहीं, जगत में उसकी बरी नहीं रहेंगे। भले ही कोई भूल से कभी बैर कर बैठे, उसका मन ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर को हम कहते हैं अजात शत्रु, मैंने जिसका बैरी कभी पैदा नहीं हुआ, तो कोई कह रही कैसे नहीं पता हुआ, दुर्योधन थे बड़े भारी बैरी, दुर्योधन के मन में भीम से बैर था, अर्जुन से था, पर आप सारी महाभारत को देख जाने युधिष्ठिर से उसका कभी बैर तक नहीं हुआ, वो तो पांच पांडव के नाते बैरी था। और इसकी घटना ऐसी आती महाभारत में नहीं आती, अन्य ग्रंथ में आती है, बड़ी सुंदर सुंदर भाव है उसमें। युधिष्ठिर महाराज ये जब पांडव कौरव के समाप्त हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, तो ये दुर्योधन अब अकेले दस इनको भीम मारने के लिए तैयार, तो सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए हमें कि भीम न मार सके, तो ठीक है। तो गई माता के पास, गांधारी के पास, माँ से कहा मैया जो होना था सो हो गया, एक बचा हूं, अगर मैं रहा तेरा सब कुछ रहा, मैं गया तो सब गया, तू मेरे बचने का उपाय बता। तो माता तो जानती थी ये बचेगा नहीं, जिस दिन उसने द्रौपदी की साड़ी खींचने का उपक्रम किया, जिस दिन उसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उस दिन उसने जान लिया था कि कौरवों का नाश होगा, उस दिन से उसने पुत्र को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। पर मां का हृदय था, गांधारी ने कहा बेटा उपाय है, तू जा धर्मराज के पास, तो उससे पूछ जा करके कि मैं कैसे बच सकता हूं, शत्रु बना। विश्वास हो गया दुर्योधन को, विश्वास था दुर्योधन को कि धर्मराज के मन में मेरे प्रति कोई बैर नहीं है, मेरे बचने की उपाय ठीक बताएंगे। वो सीधा गया धर्मराज के पास, यदि ये तो फलनी के बैरी आ गया कैद कर लो, ये चीज तो ठीक नहीं, बिना हथियार के धर्मराज के पास युधिष्ठिर के पास जब भी दुर्योधन पहुंचे, बड़े सम्मान से आदर से बैठाया, भैया आओ, प्रेम किया, क्या क्यों आए, कैसे आए, इस मेरे लायक काम, तुम्हारा काम बड़ा भारी है, भीम मुझे मारना चाहता है, और भीम मुझे मार देगा तो कौरव हार जाएंगे, मैं बचना चाहता हूं, आप बताओ कोई मेरे बचने का उपाय है। समस्या देखी तो समस्या है, दुर्योधन है कौरवों का प्रतीक और युधिष्ठिर है पांडवों के प्रतीक, गुरुनगर तक जाता तो विजय नहीं होती, नहीं विजय होती तो पांडव हार जाते हैं, पांडव विजय नहीं होती। और पांडवों के जो स्वामी है उससे पूछ रहे हैं कौरवों के स्वामी की मैं कैसे बचूं। धनराज ने कहा भैया उपाय है, सच्चा उपाय है, जरा भी उसमें और कसर नहीं। माँ जानदारी जो है ना, माँ जानदारी की आंखों में ऐसी ताकत है, वो प्रेम से देख ले तो शरीर उसका वज्र का हो जाए, और अगर वो कहीं माँ गांधारी रोज से देख ले तो भस्म हो जाए। ये घटना पहले हो चुकी थी, नंगी आगे आगे जाकर के हुई, क्योंकि कौरव से मारे गए। एक दिन रानी अपनी बहू के साथ लेकर के गांधारी देवी रण क्षेत्र में घूम रही थी, लाशों को देखती हुई। अपने अपने पति की लाश को लेकर सती होना है इस भाव से वो सब कौरव कुल वधुएं वो देवियां साथ साथ घूम रही थी। वहां श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर विष्णु को लेकर गए। ये जानते थे कि कहीं गांधारी पतिव्रता है और उसमें जगह उनमें उसमें ताकत है, अपने सौ पुत्रों को की लाश देखेगी और कहीं उसके मुंह से निकल जाएगा पांडवों का नाश हो तो पांडव से नहीं बच सकते। तो भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के रक्षक। पांडवों को पता नहीं लगता कि हमारे पर कब क्या विपत्ति आने वाली है, पर सावधान रहते पहले से श्री कृष्ण। तो माँ गांधारी नक्षत्र में गई बहुओं को लेकर के चिंता लगी श्री कृष्ण को, और वो अर्जुन को धनराज को लेकर के वहां पहुंचे। जब माँ देख चुकी तमाम लाशों को तो बड़ी बिकल हो रही माँ, श्री कृष्ण सामने पहुंचे। धर्मराज ने प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा माता ये कुलांगार कुलनाशक पतित प्रणाम कर रहा है आपके चरणों में। बड़ी ग्लानी थी धर्मराज के मन में, तो माता और हृदय उस समय रोष से दुख से व्याकुल था। धर्मराज की इस ग्लानी पूर्ण उक्ति पर माँ ने साथ तो नहीं दिया, माँ भी पिघल गई कि धर्मराज को इस अपनी कृति पर दुख है। माँ ने देखा ही नीचे हाथ जोड़े थे, अंगुलियों के नखों पर माँ को नजर गई कि नख जल कर खा गए। अर्जुन खिचक गए और धर्मराज को पीछे करके भगवान सामने आ गए। कहा माता क्षमा करो, ये तो कौरव कुल का नाश होना था, आप जानती हैं मैं गया राजदूत बनकर, कितनी मैंने चेष्टा की, दुर्योधन ने माना नहीं तो मैं क्या करूं और ये क्या करें। अब वो उनका जो ध्यान था गांधारी मैया का पांडवों पर, वो उनसे हटकर कृष्ण पर आ गया। कहा तुम मुझे समझाने आए हो, इस सारी नर्थ के जड़ पे तुम हो, अगर तुम चाहते मेरे सौ बेटे मर सकते थे। तो कहा माता मैं क्या करूं, ये भीम ने प्रण कर लिया था कि सौ बेटों को मारूंगा, बलात्कार प्रण किया था, पर जिस समय दुशासन का उसने खून पिया भीम ने, तुमने रोका है उसको, इतना नुसंस्कारी। तो कहा मैया उसने दुशासन ने जो द्रौपदी के खुले केशों को खींचा था तब उसने प्रण कर लिया था आवेश में आकर के खून पीऊंगा, इस खून से बालों को खींचूंगा, मैं क्या करता। फिर गांधारी बोली अच्छा जिस समय दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा मारी
ये क्या धर्म था, तुम कहां चले गए थे? तो कहा मैया उस समय बात ये थी कि जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि मेरी जांघ पर बैठ, जांघ का कपड़ा हटा उसने राज दरबार में कहा था मेरी जांघ पर बैठ, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जांघ को गदा से तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ा उसने। तब बोले बोली मैया अच्छा कोई युक्तियों के सामने मैं नहीं बोल सकती, तो मैं जानती हूं कि मेरे कुल का नाश तैने कराया, मैं तुझे साथ देती हूं कि तेरे कुल का नाश किसी प्रकार आपस में लड़कर होगा, तमाम यादव तमाम अपने हाथ में लड़के मर जाए। भगवान हंसे, भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं आया था, आपका जो साथ है ये सफल, सारा भारत पृथ्वी कैसे गया कि यादव तो मरते नहीं ऐसे, इनको मारने वाला था नहीं, तुम्हारी भी क्या उपद्रव करते सबके सब, आपने इनके मरने का उपाय कर दिया, बड़ा अच्छा किया माँ, मेरे पांडव बच गए और यादव तो मरने हैं। तो गांधारी की चीज को श्री कृष्ण जानते थे, धर्मराज जानते थे, तो धर्मराज ने कहा दुर्योधन से कि माँ गांधारी की आंखों में इतना तेज है कि तुम जब माँ के सामने जाओ और माँ से कहो कि एक बार हमारी ओर आप देख लो नजर भर के, तो तुम्हारा सारा अंग वज्र का हो जाएगा, पर देखो बिल्कुल नंगे होके जाना, कोई अंग भी अगर बिना ढके रह गया तो उतना अंग तुम्हारा खच्चा रह जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? धर्मराज कहते हैं अपने शत्रु से जिसको मारना उनके लिए अच्छा आवश्यक है। श्री कृष्ण तो तैयार पहले से, उन्होंने सोचा कि कहां जाके आए और क्या कर रहे हैं, रास्ते में मिले। दुर्योधन जी कहां गए थे आप? बोले महाराज माँ के पास, धर्मराज के पास गया था। क्यों गए थे? इसलिए गया था कि मैं भीम से न मर सकूं, उपाय पूछने। तो क्या उपाय बताया युधिष्ठिर जी ने? बोले कहा कि माँ से कहो कि आँख की पट्टी खोल दे और तुम नंगे हो के माँ के सामने खड़े हो जाओ, तुम बद्र के हो जाओ। भगवान है थे भाई, बात सकती है, गांधार में ही ताकत है, पर कितने बड़े वीर तुम मौत के डर से किस उम्र में नंगे जाओगे माँ के सामने, तुम शर्म नहीं आएगी? अरे मरना ही तो है ना, छुट्टी तो मरने के लिए पैदा होता, तुम कम से कम जांघिया पहन लो और चले जाओ माँ के सामने। हाँ बोलिए बात ठीक महाराज, आपने ठीक बताया, बड़ा माँ के सामने नंगा कर जाता। उसे ये बात मालूम थी नहीं कि जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा भीम कर चुके हैं, भूल गया उस समय, जांघिया पहन के गया माँ के सामने। माँ ने देखा, माँ ने पूछा कि धर्मराज ने कहा था क्या जांघिया पहनने की बात? बोलना उनने कहा था नंगे होकर जाना, तो किसने कहा? कृष्ण ने कह दिया क्या? यही होना है, यही श्री कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा है वही होगा बेटा, जाओ। तो ये मैं कह रहा था अजात शत्रु बना धर्मराज का, धर्मराज के मन में कोई बैरी था ही नहीं, कोई बैरी पैदा उनके हुआ ही नहीं, लड़ाई इतनी हो गई हो गया सब मारे गए, तो धर्मराज के मन में कभी ये नहीं आया कि मेरा कोई बैरी है। धृतराष्ट्र को घर में रखा, इतनी सेवा की, आख्यायित हो गए वो, भीम ने जरा जरा सा उनके साथ बुरा बर्ताव किया बीच बीच में, तो धर्मराज के मन में कुछ, तो अपने मन में अगर कोई अजात शत्रु हो ये मन में भावना कर ले
कि मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मैं सबका मित्र, मैं सबका प्रेमी, उसका बैरी कोई रहेगा नहीं, कोई से बैरी हटाएगा। जिस प्रकार से हमारे मन की धारणा होगी उसी प्रकार के हम बनेंगे। ये नेगेटिव चीज जो है ना, नकारात्मक अनिष्ट जो वस्तुएं हैं, इनको याद न करें, न अपनी करें, न दूसरों की करें। और जो सद्वस्तुएं हैं, सद्भाव हैं, उनका स्मरण करे, उनका पोषण करे, उनको पुष्ट करे, उनको बढ़ावे, वही बांटे और वही खींचे। ये अपने अंदर से दो चीज बराबर होती रहती है, बराबर एक दान और एक ग्रहण। अपने अंदर से अपने जैसे भाव हैं, उनके परमाणु निकल निकल कर विचारों के नित्य दूर दूर तक फैलते हैं। और बाहर के सजाती जो परमाणु हैं, अंदर खिंच के आते हैं। एक चुंबक अंदर है, एक तंत अंदर है, बाहर खींचता है, वो खींचता है। तो हमारे मन में अगर सद्भाव है, सद्गुण है, क्षमा दया सत्य प्रेम करुणा इत्यादि हैं, तो हम जगत यही देते हैं, अपने आप देते हैं। और हमारे मन में अगर दोष भरे हैं, क्रोध काम लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष हिंसा भय, तो जगत ये देते हैं। अपने मन में सद्गुणों को भरे, बार बार सद्गुणों का चिंतन करें, सद्गुणों को पुष्ट करें, सद्गुणों को फैलाएं, ये बड़ी आवश्यक बात है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और इसके बदले में यदि हम दुर्गुणों को भरें अपने अंदर, दुर्गुणों को रखें, तो अपनी तो हानि है ही, एक जगत की भी हानि। कोई आदमी कहे कि मैं जगत का क्या बोला करता हूँ जी, मैं तो अपने घर में शराब पीता हूँ और मैं अपने घर में गंदी जबान बकता हूँ, मैंने देखो क्या बुरा किया, ये ठीक नहीं। वो जो कुछ करता है, जो उसके मन में है, वो जगत को वही दे रहा है अनवरत। जगत के पास उसके मन की चीजें पहुंच रही हैं लगातार, बिना उसके कहे, बिना सुने, बिना प्रेरणा के, अपने आप। तो इसलिए अपने मन में शुभ भावों को रखें। और ये एक कला है, एक आर्ट बड़ा सुंदर है, कि घर में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, संबंधियों में, देश में, विभिन्न मतवादियों में अगर प्रेम करना है, तो उनके गुण देखना शुरू करो, उनके गुणों की तारीफ करो, सच्ची बनावटी नहीं, उनके गुण पुष्ट हों, इस प्रकार की स्थिति पैदा करो। उनको द्वेष करना पड़े, उनको बैर करना पड़े, उनको बदला लेना पड़े, उनके मन में हिंसा के क्रोध के भाव उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति ना आने दो। जगत में कोई बुरा नहीं है, सब में भगवान है, सब में वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर। यदि हम किसी में बुरे की भावना करके, अनिष्ट की भावना करके, अपने अंदर बुराई की भावना करके हम बुरे को स्थान देते हैं, हम बुराई को, बुरी चीज को एक पोषण देते हैं, उसको हम जगत में फैलाते हैं। तो बुराई को पोषण कभी न दें, किसी प्रकार न दें। कोई प्राणी जगत में ऐसा नहीं है जो गुणहीन हो। हमारी आंखें ऐसी बननी चाहिए जो जाकर के टिके गुण पर, दोष पर टिके ही नहीं। हमारी आंख बन गई इससे विपरीत, वो पद पद पर दोष देखती है, गुण नहीं देखती। इसलिए गुण वाले में भी हमें दोष दिखता है। क्या सदगुण अधिक है? बोले अमुक आदमी माला बहुत खेलता है, बोले कोई न कोई इसके मन में बुरी नीयत होगी, दम्भ करता होगा, माला को फेरता पड़ा। चाहे वो बेचारा माला फेर के सुविधाओं से ही, तो हमारे मन ने उस माला फेरने वाले ने दोष की कल्पना कर ली। हमारे सामने से निकला एक आदमी, अपनी धुन में जा रहा है, अपने काम जा रहा है, दोस्त देखो कितना घमंडी है हमारी ओर देख करके, इसने प्रणाम भी नहीं किया, राम भी नहीं किया, हमने अपना अपने मन का दोष उस पर थोप दिया। इसी प्रकार से संसार में बहुत से कलह को होते हैं केवल संदेह को लेकर, बेसमझी को लेकर। एक घटना हुई, एक जगह सच्ची बात है ये, कि एक लड़का था, उस लड़के को चवन्नी मिली कहीं, तो चवन्नी थी खोटी, तो वो क्या करे बेचारा, तो उसके मन में आज हलवाई के दुकान पर जाए तो चवन्नी दे दें, अगर वो ले लेते तो ठीक है छोटा, तो वो वहां हलवाई दुकान पर फिर भीड़ लगी हुई, उसने चरण की मिठाई ली और वो चवन्नी दे दी। चवन्नी जो थी उसने हलवाई में ले ली, उसे देखा है उसने वो गोलक में डाल दिया, लड़के को बड़ा हर्ष हुआ, मिठाई एक हाथ में लिए, अरे चल गई चल गई चल गई चल गई, कहने के दौड़ा। उन दिनों उस गांव में शहर में था हिंदू मुसलमानों में आपस में सनातन, दौड़ा चल गई अर्थात लाठी चल गई, बंदूक चल गई, दंगा शुरू हो गया। जब पता लगा दंगे का, उसके मूल में ये चीज निकली कि लड़के की चवन्नी चल गई। इस प्रकार से बहुत से झगड़े जो होते हैं ना, ये हम से होते हैं, हम समझते हैं युवा भी मारेगा, युवा भी हमसे बैठे तंग मारेगा, उनको मारेगा, उस सामने अगर दिखता है तो हम लकी से मार लेते हैं, आगे जाया वो मारने दे कहीं हमको मारने दे, समीप आया हो गाड़ी हमने ऊंची कर ली, पास आए बोले मार दे, जाते पहले मारे लाठी मार दी उसके, या तो वो उसका खून हो गया या बदले उसने मारी, लड़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से जगत में बहुत झगड़े जो होते हैं ना, वो केवल वहम पर, बेसमझी पर और बिना जांच किए उस चीज को ग्रहण कर लेने पर होते। गत वर्ष की बात है, मैं बढ़ा था नीचे और अपना दरवान कपड़े दरवान बड़े गुस्से में भरा हुआ है, मैं संध्या करके बैठा ही था, खुद रहा था कि दूसरे को मैंने पूछ लिया भाई क्या बात है, बोले बात क्या बाबू, अपने कमरे में उन लोगों ने चिट्ठी फेंक दी, जल्दी जाना चाहिए। मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, किसने संजीव उन लोगों ने फेंक दी, मैंने कहा तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, मैं करता हूँ। मैंने एक चिट्ठी लिखी गुरुआनंद जी का नाम, मैंने कहा मैंने किस तरह से दरवान कहता है और चिट्ठी आपकी ओर से किसी कमरे में आई, कैसे आई है, क्या हुआ है, लेकिन अगर जानबूझकर फेंकी हो तो उससे आप डांटिए और भूल से फेंकी हो तो आप उसका पता लगाइए, ऐसी चीज होनी अच्छी नहीं। चिट्ठी लिख गया, वो बेचारे उठे, पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस कमरे में कोई ठहरा हुआ था, उसमें एक नौकरानी थी दाइन, छोटे बच्चे ने चट्टी थी, उसने उसको उठाया, कागज था दीवार पर फेंक दिया, वो भाग्य से गिर गई आकर के खिड़की में, दोष नहीं था ना, उन्होंने चिट्ठी लिख दी उसको उसी समय, ये घटना ऐसे ऐसे हुई है, उन्होंने स्वयं जांच की है, अमुक आदि उनका नाम दिखाइए, ठहरे हुए थे, आप स्वयं आकर के जांच कर लें, इस मूल ग्रह क्षमा चाहते हैं, झगड़ा मिल गया। और क्या उनकी चट्टी फेंकी सुनकर हम कहते थे बोले उधर पूरा फेंकू तो क्या होता, लड़ाई करती ना, तो लड़ाइयां बहुत इस तरह से बढ़ा करती हैं, या तो वहम से, संदेह से
یا بغیر جانچ کے یا آنکھ پھر جانے.
آنکھ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟
جہاں آنکھ میں دویش ہو جاتا ہے نا وہاں دن بھی دور دیکھتا ہے, یہ نیم ہے سدھانت. اور جہاں آنکھ میں راب ہو جاتا ہے وہاں دوش بھی دور دیکھتا ہے. اپنا بیٹا اور ترایا بیٹا دو لڑکے کے آئے ماں کے پاس, ماں کو اپنے بیٹے کا دوش پرایا دیکھے گا نہیں, اسے دیکھے گا لیکن دیکھے گا اس کو چھپا لے گی ماں, اسی اوپر سے بتا دے گی. یہ کیوں؟ یہ راج ہے, یہ راج تو یہ اس لیے دوسرے کا گن دیکھے اور دوسرے میں کہیں دوش دکھائی دے تو یہ سوچے پہلے کہ میرے میں کوئی دوش ہے یا نہیں. اگر وہی دوست اپنے مل گیا تب تو اس میں دوست دیکھنے والے ہم کون ہوتے ہیں, دوسرا ملا تو اس میں ایک ہے ہمارے میں ایک ہے, دیکھ لیں تم دوست ہی میں تو ہے نہیں, تم گسا کرنے والے کون, کیا ادھیکار ہمیں چور کو چور کہے کہ تم چور ہو؟ سوئم چور ہے وہ کس کو چور کیسے کہے؟ اس لیے دوسرے میں کہیں دوست نہ دیکھے. جگت میں اگر سب سے پریم بڑھانا ہو سننے دری کا یہ ہے دوش نہ دیکھے انہیں دوش چالیس میں اگر بھی سنتے بھی دیوار سنتی ہے اور دیوار نہ سنے تو آکاش میں جو شبد رہتا ہے یا آکاش سنتا ہے اور وہاں تک آکاش کے اندر سے ہو کر کے وہ پرمانو پہنچ جاتے ہیں اس کے من تک جا کے ٹکراتے ہیں, چاہے شبد وہ نہ ہو اس کے من میں چیز آ جاتی ہے امک آدمی ہماری نندا کر رہا ہے چاہے اس پر نہ آئے. اس لیے اس ساودھانی کی آوشیکتا ہے جگت میں جس کو رہنا ہے سکھ سے, طریقہ اس کا یہ ہے کہ سدبھاو کا سدگن کا ہمیشہ پوشن کرے اس کو بڑھاوے. انشت سے لڑنے کی اپیکشا ادگنوں سے لڑنے کی اپیکشا سدگن کا پوشن کرنا ادھک سہج ہے, ادھک لابھدایک ہے. اور اوگن پھر اپنے آپ مر جائیں گے, اوگن سے لڑنے جائیں گے آپ اس میں کیا ہوگا بھائی, جھوٹ کے بدلے میں جھوٹ بولو. اوگنوں سے لڑنے جانے میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو اس چیز سے کیا کریں اور اپائے نہیں, یہاں تو مائر خط مائر تھے, یہاں تو مایا تھی تم نے جو مایا رکھی ہے تو تم نے دو جا دیا پرتیک. تو اس بات سے بچو, کوئی دوشی ہے تم دوشی کیوں بنتے ہو, کوئی بھول کرتا ہے تم بدلے بھول کیوں کرتے ہو, تم اگر اسے بھول مانتے ہو اور وہی بھول تم کرنے جا رہے ہو یہ کہاں کی بدھی مانی ہے؟ تم کہتے ہو بڑا بدماش ہے اس نے ہماری چوری کی, اب بول اس کے یہاں چوری کروا لو اپنے سے چوری کی ہے, یہ کہاں کا نیا ہے, یہ کہاں کی بدھی مانی ہے؟ اگر چوری بری ہے تو تم چوری کرنے کیوں جا رہے ہو, اور بری نہیں ہے تو اسے برا کیوں بتا رہے ہو؟ جس چیز کو لے کر کے تم دوسرے کو برا مان رہے ہو اسی چیز کو تم اپناتے ہو تو تم نے اس میں کیا فرق رہا, تم اس میں تم اس سے کس بات میں زیادہ اچھے ہو؟ اس لیے برے کے ساتھ بڑا برتاؤ کرے اور برے کی برائی کو دیکھے نہیں, اس میں برائی ڈھونڈے تو برائی مل جائے گی. آنکھ بدلنی چاہیے, جو سب میں ایشور دیکھتا ہے اس سب میں ایشور دیکھتے ہیں, جو سب میں بری دیکھتا ہے اس کو بری دیکھتے ہیں. ایسا ہم سے کہتے ہیں کئی لوگ ایسے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے جگت میں کوئی ہے ہی نہیں, ہمارے سبھی سب بہری کوئی ہے جگہ ہمارا اچھا رہا ہے. ارے بھلے آدمی تم نے تمہاری آنکھ ایسی ہو گئی, تم جگت میں بھلا دیکھتے نہیں, بھلا کہاں سے ملے گا؟ یہ دیکھو سب بھلے ہیں, تمہارا کوئی بیری نہیں. نندا جو تمہاری کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو وہ تم کو دیکھنا چاہتے سروتھا نردوش, تمہارے ایک ایک دوش کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں, چھوٹے کو بڑا کر کے بتلاتے ہیں, بنا ہوئے آروپ کرتے ہیں, ساودھان کرتے ہیں, تم ایسے دوش میں نہ پھنسنا, انکار کرتے ہیں تمہارا. اور پھر اس جگت میں کوئی کسی کر نہیں سکتا, اپنے کرم کا پھل اپنے کو ملتا ہے दूसरा मित्र बनता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे के साथ कभी मन से, वचन से, तन से बुराई न करो, और उसकी बुराई को सोचो मत, याद न करो, भूल जाओ, और उसमें जो गुण है उनको ढूंढो, तुम्हारा लाभ होगा, लाभ होगा। ये सोने की खानों में से सोना निकालते हैं, क्योंकि तमाम पतली सोने के हो गए, वो ढूंढ ढूंढ करके, गला गला करके उनके अंदर रहे हुए सोने को निकालते हैं। उनका लक्ष्य सोने की प्राप्ति, न कि पत्थरों की प्राप्ति।
पत्थर में सोया ढूंढो, विष में अमृत ढूंढो, बुराई में भलाई देखो, तब तुम भले।
बुराई जगत में भरी है, बुराई किसमें नहीं है। बुराई को देखोगे तो तुम्हारा क्या लाभ, तुम्हें बुराई मिलेगी, रात दिन बुराई का चिंतन होगा, वो बुरा वो बुरा वो बुरा, दिल में जलन होगी, घृणा होगी, घृणा का जो स्थूल रूप है वो द्वेष है, द्वेष का मोटा रूप बैर, और बैर का मोटा रूप हिंसा, हिंसा का फल नरकों की प्राप्ति। अगर ये करना हो तो दोष देखो, अपनी हानि है और उसकी भी हानि, उसके दोषों को देख देख करके और बता बता करके उनका पोषण करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और उनके प्रति विद्वेष की क्रिया करके उनके अंदर रहने वाले द्वेष की आग में आहुति डालते हैं, वो गिरते हम गिरते हैं। इसलिए जगत में भलाई देखो, सब भलाई देखो, कोई बुरा जगत में है ही नहीं, सब भगवान के रूप जो है ये देखो, तो जगत में तुमको सब भले दिखेंगे, तुम्हारे पास भलाई आवेगी, तुम्हारे मन में भलाई आवेगी। ये नियम है कि रात दिन आप चिंतन कीजिए, अच्छे भाव से भी चोरी का, धीरे धीरे आप चोर बन जाएंगे। तो चोरी का जो चिंतन होता है, वो चिंतन जो है आपके मन को वैसा बना देगा। इसलिए साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत वाले ऐसा कहते हैं कि छोटे छोटे बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ साथ उन्हें बताना पड़ेगा कि यौन संबंध क्या होता है, तो समझेंगे कैसे। उनके लिए तो ऋषि संघ रहना ही अच्छा है, उन्हें मालूम न हो कि क्या पदार्थ है, अरे उन्हें मालूम करवा दिया, उनमें वो त्याग तो नहीं आवेगा, लड़कपन में यौवन के आरंभ में वृत्तियां शांत तो कहीं सुखदेव की होती है, बिगड़ा हुआ वातावरण, सिनेमा रोज देखना, बेबी उस गंदे गाने सुनना, और उनके सामने इन चीजों को रखना शिक्षा के रूप में ही, तो क्या होगा, जानकारी उनको प्राप्त होगी, दोषों के लिए उनकी वासना जागृत होगी, दोष बनने लगेंगे छोटे बच्चों। इसलिए बुरी चीज को भले के नाम पर भी मत रखो, सच बोलना सिखाओ, तो झूठ क्या है ये मत कहो। जो लोग बच्चों को बात बात में डांटते हैं, लड़के शिष्यों को स्कूलों में डांटते हैं, उनके दुर्गुणों को बता बता करके उनका उनका तिरस्कार करते हैं, उनके हानि करते हैं, क्या होगा उससे, दुर्गुणों का पोषण होगा। सद्भाव करो, उनमें जो गुण है उनका दहन करो, उनका विकास करो, उनकी पुष्टि करो, करें वो ज्यादा उन्नत होंगे। किसी आदमी को बार बार अगर दोष बता बता के तिरस्कार किया जाए, उसका तेज नष्ट होता है, नष्ट होता है। या आपने पढ़ा होगा महाभारत में, जिस समय सेनापति कर्ण हुए, उस समय कर्ण ने कहा कि हमें एक सारथी चाहिए जो श्री कृष्ण के मुकाबले का हो, हमें लड़ना है।